तीन हाँ पहले अपने अंदर
हाँ जी
तो ये तीन चार साल के जो पुरुषार्थ अभी जो बाकी रहा है
हाँ जी
तो क्या लक्ष्मी नारायण संगम जो लक्ष्मी नारायण का मतलब उसके बाद सात आठ तक
हाँ
आपके कहे
हाँ
सात आठ तक जो लक्ष्मी नारायण का डायनेस्टी शुरू हो जाए
सात आठ तक नारायण की बात नहीं
जी
लक्ष्मी को मैदान में आना चाहिए स्टेज पर लक्ष्मी को आना चाहिए और उसी क्रम से आए जिस क्रम से पहली और दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई थी सबके सामने नहीं प्रत्यक्ष हो गई एक साथ उनका भी अपना अपना ग्रुप है उस ग्रुप में वो प्रत्यक्ष होते हैं क्या कहा परिवर्तन करने वालों में जो परिवर्तन करने में परसेंटेज में ज्यादा होंगे उनके बीच में प्रत्यक्ष होगी हाँ जी सबके बीच में नहीं
तो एक समय तो कहा गया है कि सात आठ तक जो ये संगम लक्ष्मी नारायण का शुरू हो जाएगा
नारायण तो प्रत्यक्ष हो ही गया
जी
अभी लक्ष्मी प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हुई कि मैदान में नहीं है स्टेज पर नहीं है इसलिए कोई को शक पैदा होता है या नहीं है तो वो शक सुबह खत्म हो जाएगी सबक ही नहीं खत्म हो जाएगी क्या कहा हाँ जी जो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड होते जावेंगे उनका शक सुबह खत्म हो जाएगा जो अनिश्चय है बार बार आता है वो समाप्त हो जाएगा
तो मेरा प्रश्न तो नहीं आया है
हाँ
तो मेरा प्रश्न है कि अगर भी लक्ष्मी नारायण दो हजार अठारह तक किसने बच्चे की जन्म होता है
हाँ जी
2018 तक किसने बच्चे की जन्म होता है
हाँ जी
तो 2018 और ये 2007 से 8 लिए सात आठ से लेके 2018 तक
हाँ जी
ये जो 11-12 साल जो हुआ
हाँ जी
ये कौन सी पिक्चर शूटिंग में जाएगा
है
यह कौन से शूटिंग में जाएगा
कौन सी प्रैक्टिकल शूटिंग में जाए और कहाँ जाए
नहीं नहीं ठीक तो है लेकिन पिछले बच्चे की जन्म 18 में
हाँ
तो 18 के बाद तो वही बिल्कुल मतलब जो आत्मा जन्म लेगी उसको जन्म देने वाला जो आत्मा है दोनों है माँ बाप दोनों माँ बाप जो हैं जन्म देने वाले
हाँ जी
तो ये जो 12 साल की जो है
हाँ जी
ये 12 साल हमारे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में
हाँ जी वो मूर्ति तैयार हो जाएगी 12 साल में
तो
लक्कड़ बुद्धि जो होता है ना
कंचन काया नहीं बनने से तो कृष्ण और राधा की आत्मा के जन्म देने
जो मूर्ति तैयार की जाती है जगन्नाथपुरी में वो मूर्ति लक्कड़ की होती है वो लक्कड़ जो है वो 12 वर्ष के लिए पानी में डाला जाता है तो 12 वर्ष के अंदर वो लकड़ी पूरी काली हो जाती है पक जाती है परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है और फिर वो जगन्नाथ के रूप में पूजी जाती है
तो इसीलिए उड़ीसा में गायन है
हाँ जी
कि 12 साल में एक बार नौ कलेवर होता
है नौ कलेवर
मतलब शरीर में
हाँ जी हाँ जी
नया पेड़ पहले का मतलब यह कि जो दिन का पेड़ होता है जिसका उम्र 12 साल होता है
हाँ जी हाँ जी
और उसी दिन को संत चक्र जरा मतलब ये चांद मतलब कुछ
चिन्ह होगा
हाँ जी निशानी निशानी
हाँ
और हमारे उड़िया में कहावत है कि क्या कहते हैं संकट चिन्ह मतलब संघ का बिल्कुल गिद्ध जो होता है
हाँ
संघ गिद्ध बिल्कुल मतलब उस पर बैठा हुआ होगा
अच्छा
तब जाके उस पेड़ को काटेंगे
हाँ
और जगन्नाथ की मूर्ति को तैयार करेंगे
और सांप उसको गार्ड किया हुआ पेड़ को
ऐसा कहावत है
हाँ वैसा चिन्हट करके उसको लाते हैं और उसको फाड़ कर उसको बनाया जाता है
हाँ पूछना क्या चाहते हैं
तो पूछना ये चाहता हूँ मैं कि वो जो 12 साल हुआ वो 12 साल क्या बिल्कुल माता पिता की कंचन काया बनने की प्रेरणा है?
कंचन काया अगर माता पिता की नहीं बनेगी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा?
वो तो है, लेकिन यह प्रेरण जो मैं कह रहा हूँ 6 से लेके 18 तक यह प्रेरण जो है, यह प्रेरण बिल्कुल मतलब माता पिता की बनने की, कंचन काया बनने की प्रेरण है क्या?
अरे इसमें पूछने क्या बात है, अगर वो कंचन काया उन्हीं की नहीं बनेगी तो आगे जो और जन्म लेने वाले 18 वर्ष के अंदर बच्चे हैं उनके माँ बाप की कंचन काया कब बनेगी?
क्लियर हो गया।
पहले तो जो पहला आयुषु राधा कृष्ण को जन्म देने वाले हैं उनके माँ बाप की कंचन काया बननी चाहिए
ना। के लक्कड़ बुद्धि के बारे में है, इसका हम लोग ये अर्थ लगा सकते हैं कि कलयुग के अंत में एक आत्मा पत्थर क्या होता है, पानी में डूब जाता है, परंतु तो लकड़ी होती है और डूबता नहीं।
ठीक है,
तो जो नंबर वन जो आत्मा है उसकी बुद्धि कुछ ऐसे रहती है जो पूरा डूब नहीं पाता, इसलिए
उसमें शिव प्रवेश है ना,
इसलिए इसको लकड़ कहते
हैं। हाँ जी,
नहीं डूबता।
तुम बच्चे थोड़ी सेवा करते हो, राम और कृष्ण की आत्माएं थोड़ी सेवा करती है, कौन सेवा करता है? बाप दादा सेवा करता है। तो बाप दादा सेवा करता है तो हम बच्चों को जो रुद्रमाला के मड़के उनको तो अहंकार ही नहीं आना चाहिए, उनको तो और निरहंकारी बन के रहना चाहिए, हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं। मैं पतितन को राजा
इसलिए कहा जाता ना, पूरा निश्चित होती है।
मैं प्रवेश कौन है? हाँ, तो बुद्धि नीचे गिरने का सवाल ही नहीं,
इसलिए लक्कड़।
हाँ जी,
पानी के ऊपर तैरता रहा बाबा, वो जो पानी इसको विषय विकार की संसार रूपी पानी कहेंगे,
वो तो संसार रूपी सागर ही है ना, विषय सागर है तो और क्या कहा जाएगा।
हाँ, उसमें तैरता रहता पूरा डूबता।
हाँ जी
बाबा।
हाँ,
उड़ीसा की जो रथ यात्रा होता है,
हाँ जी,
उसी में पहले रथ यात्रा को मतलब खींचने के पहले से भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है।
हाँ जी,
तो ऐसा क्यों, जबकि एक पवित्र बिल्कुल मतलब पवित्र बिल्कुल पर्व माना जाता है इसको, तो भद्दी भद्दी गालियां दे करके उसके बाद को रथ को तो लोग खींचते हैं।
रथ किसको कहा जाता है?
रथ शरीर को कहा जाता है,
प्रजापिता के शरीर को ही कहा जाता है ना
जी।
तो अभी क्या आप समझते हैं कि ग्लानी का काम पूरा हो गया? अभी संसार में ग्लानी बढ़ेगी या कम होने लगेगी? अति को पाएगी या परसेंटेज कम होने लगेगा? अति को, तो अति को पाने में अभी टाइम है या नहीं है? हाँ, अभी तो माया पूरा फोर्स लगाएगी, जो 98 में फोर्स लगाया था वो तो थोड़ा सा था, कलकत्ते में जो हुआ टीवी वालों के द्वारा, अखबार वालों के द्वारा, और जो छवि खराब की गई आध्यात्मिक विद्यालय की वो तो बहुत थोड़ी थी, और माहौल हुआ जो खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि माँ बाप बच्चियों को जबरदस्ती अपने घर से ले जाने लगे, गांव वाले उनके पीछे पड़ गए, लड़कियों को कहाँ डाल दिया, वापस लेके आओ, और उनके दबाव में वो आ गए और उन बच्चियों को वापस ले गए, उनको उनके पीछे पड़ गए, इनकी शादी करो अभी नहीं फिर तुम वही डाले आओगे जाके। हाँ, तो ये हालात हो जाएंगे। जो मजबूत बच्चियां थी वो तो गई नहीं, जो कच्ची मुच्ची थी वो माहौल देख करके घबरा गई और भाग खड़ी हुई। हाँ
बाबा, गाली देने की परीक्षा जो करती है विपरीत बुद्धि वाले बच्चे ही करेंगे ना?
गाली कौन देता है? गालियां भगत लोग देते हैं कि ज्ञानी लोग देते हैं? फिर हाँ जी, ये बात समझ में आ गई?
हाँ जी आ गई।
हाँ जी, और आगे?
आगे है, रथ को खींच करके ले जाते हैं मौसी के मंदिर में,
माया मौसी के मंदिर में,
उसके बाद 8 दिन वहाँ रहता है।
माया मौसी पहचान में नहीं आई अभी तक?
हाँ तो गई।
आ गई ना,
हम
उसको तो मौसी क्यों कहा गया है?
हाजी,
माया मौसी क्यों कहा गया?
माया मौसी है,
है?
माया मौसी है,
माया मौसी क्यों कहा गया?
इसलिए मतलब बुद्धि को भ्रमित करना।
ये भाई सही बता रहा है, ये माँ की बहन है इसलिए मौसी कहा जाता
है। माँ की बहन है।
तो माँ कौन है?
माँ है जगदम्बा।
जगदम्बा, और जगदम्बा की बहन कैसे हो गई?
बहन इसलिए कि उसी के सीट पे वो बैठी हुई है, उसी के सीट में बैठी हुई है, माँ की सीट में।
किसके सिर पे?
सीट पर
माया मौसी बैठी हुई
है।
हाँ, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद माया मौसी जो है उस सीट पर बैठ गई और अपने को माँ साबित कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बताया। रावण के सिर में 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 सिर हैं प्रकृति माता के और 5 सिर हैं माया रावण के। तो माया रावण के जो 5 सिर हैं वो एक तरफ और प्रकृति के 5 सिर दूसरी ओर, इसलिए वो दोनों दोनों के जो मुखिया हैं, उन 5 सिरों का मुखिया माया रावण और उन 5 सिरों का मुखिया प्रकृति, तो दोनों बहने बहने हो गई। और
कुटी का राजा जब तक उस रथ के सामने में अगर छेरा पारा नहीं करेगा,
झाड़ू मारेगा,
छेरा पारा करने से समझते ना बाबा?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
झाड़ू नहीं करेगा और सोने का जो झाड़ू होता है उसमें वो साफ नहीं करेगा,
हाँ,
तब तक विक्रम मतलब रात यात्रा शुरू नहीं होता है,
तक यात्रा शुरू नहीं होगी।
नहीं होगी,
तो अभी लक्ष्मी आने वाली है,
नहीं आगे बढ़े,
तो अभी लक्ष्मी आने वाली है
जी।
लक्ष्मी आने वाली है कि नहीं?
हाँ, आने वाली है।
आने वाली तो झाड़ू वाड़ू लगेगा कि नहीं?
हाँ,
है?
लगेगा।
हाँ,
सोने का झाड़ू का अर्थ क्या होगा?
सोने का झाड़ू माने सच्ची आत्मा है। हाँ, तो झाड़ू तैयार खड़ा है, वो तो बाबा ने पहले ही बता दिया, प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है।
यहाँ पर पूरी का राजा बताया हुआ है।
अब राजा बताया हुआ है तो रुद्रमाला के मन के राजा नहीं बनते हैं?
हाँ।
फिर क्या बात?
तो बाबा ये कहा जाता माया ये प्रकृति का झाड़ू लेकर खड़ी है, राइट हैंड वाली और सोने की झाड़ू हो सकती है।
और क्या?
और ये बाएं हाथ वाली और
लोहे की झाड़ू हो सकती है, आजकल तो प्लास्टिक की भी निकल पड़ी है।
जगन्नाथ की बाहु मतलब भुजकटा दिखाया जाने का कारण क्या है?
तो जो भुजाएं हैं वो सब कट जाती है, ऐसे महाकाली रूप धारण करती है ना
जी,
तो भगवान की सारी भुजाएं काट करके अपनी लज्जा छुपाने के लिए चारों तरफ लटकाई लेती है कमर में। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ऐसे ही जो जगदम्बा है वो महाकाली का जब रूप धारण करती है तो जो भी भुजाएं हैं भगवान की वो सब कट जाती है, जो खास भुजाएं हैं दो वो भी जाती हैं, तो टुंडे रह जाते हैं।
जगन्नाथ का सिर्फ ये जो हाथ का हिस्सा है वो दिखाया नहीं, ये दिखाया?
हाँ जी, हाँ जी।
मतलब इसका मतलब क्या? जो भुजाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो असल में भुजाएं नहीं है।
हाँ जी,
ये हाथ नहीं होने से तो काम कुछ हो नहीं सकता।
हाँ, तो काम क्या होगा? टुंडे होके रहो, ऊपर वाले को याद करो, योग बल से विष्णु की बादशाही ले लो, है उसमें हाथ और पांव क्या करेंगे? कौन? हाँ, जब संगठन क्लास होता है तो आधर कुमार आते हैं,
अकेले आते हैं,
अकेले आते हैं,
माताओं को युगलों को साथ में लेके नहीं,
अपनी युगलों को लेके नहीं आते। अच्छा, कुमारियों को लेके आते हैं?
कुमारियों को
भी लेके नहीं आते,
अकेले आते हैं, कुमारियों को लेके आते,
कोई कोई कुमारियों को लेके आते हैं और अपनी युगल को तो बिल्कुल ही नहीं लाते। हाँ, तो फिर उनमें आपका नंबर है कि नहीं? है? आपका नजदीक ही है, नजदीक ही माना
पाठशाला के
नजदीक
है। हाँ, हाँ होता तो है, लेकिन संगठन में आप उनका उन युगलों में जो आदर कुमार आते हैं संगठन में उनमें आपका नंबर है कि नहीं है? अच्छा जी, हाँ जी, आदर कुमार के हिसाब से आपका नंबर है कि आप, वो आदर कुमार जो है वो अपने युगल को नहीं लाते,
उसके लिस्ट में नहीं
है,
युगलों को नहीं लाते हैं, उसके लिस्ट में नहीं, हमारे युगल नहीं जाते।
आपकी युगल आती है?
लेट में आती है,
आती है लेकिन लेट आती है। चलो, हाँ, फिर आगे
ऐसा करना चाहिए, उन आदर कुमारों को ऐसा करना चाहिए,
ऐसा करना चाहिए, ऐसा है। रुद्रमाला में रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है, रू रू आपस में भाई भाई, तो जो भाई भाई होते हैं उनका तो बराबर हक होता है कि नहीं, कम ज्यादा होता है? बराबर हक होता है। तो अगर कोई युगल है, अधर कुमार कुमारियां हैं, और अधर कुमार अपनी युगल को आत्मिक दर्जे का बराबर हक नहीं देते और उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो उनका नंबर पीछे हो जाएगा, क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि वो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते। जैसे युगल हैं एडवांस पार्टी के, और युगल खुद सर्विस करने के लिए चारों तरफ भागे, और माता मैच्योर्ड है, सफेद बाल होने लगे, फिर भी उसको जाने न दे, कंट्रोल में करके रखे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आत्मिक स्थिति नहीं है, मन के अंदर ये बैठा हुआ है कि हमारी क्या है, हमारी घरवाली है, इसके ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि नहीं बनी। तो आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि नहीं बनी है तो नंबर पीछे होता जाए। अच्छा, और
अच्छा बाबा, भारत में तो भगवान आते हैं, तो बाप दादा का जो दिल है वो दिल ही दिखाया है।
हाँ जी,
तो सुप्रीम सोल जहाँ पर निवास करते हैं वो तो उसको पूरी बोलते हैं, भ्रकुटी पूरी बोलते हैं, तो वो स्थान बाबा भारत वर्ष में कहाँ होगा? जैसे दिल्ली को दिल दिखाया है, तो जहाँ पर वो भ्रकुटी का यह है वो भारत वर्ष में कहाँ दिखा सकते हैं?
भारत कहाँ दिखा सकते?
जैसे भारत जो है, भारत में भगवान आते हैं, और भारत का दिल कौन है? दिल है चैतन्य भारत का भी और जड़ भारत का भी, तो वहीं पर
जड़ भारत का और चैतन्य भारत का
दिल्ली है,
दिल
हाँ।
दिल्ली ही है,
बाप दादा का दिल है दिल्ली।
हाँ। तो उसी तरह जो आत्मा, वो जो बाप दादा जहाँ रहते हैं अपने निवास स्थान पर जहाँ रहते हैं, वो जगह बाबा कहाँ होगा?
जो भरीपूरी कुटी हो
तो बाबा कहाँ होगा?
भरीपूरी हो, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सब में भरीपूरी कुटी है तो भरकुटी है।
बाबा जड़ दिल्ली जैसे है वैसे जड़ स्थान कहाँ होगा बाबा?
कोई स्थूल बातें थोड़े ही है,
जड़
ऐसे थोड़े ही कि बनारस कहाँ है? अरे वो स्थूल बनारस तो वहाँ दिखा दिया है, है? जहाँ ज्ञान का रस बना है वो बेहद में है, तो ज्ञान का रस कहाँ बना? बनारस में बना। तो जहाँ से ज्ञान का रस बना, एडवांस का रस बना, वो बनारस हो गया। ऐसे ही अल्लाहाबाद, वो अल्लाहाबाद वहाँ दिखा दिया है जहाँ तीन स्थूल नदियाँ इकट्ठी होती है, और ये अल्लाहाबाद तो अल्लाह का जो अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है, अल्लाह माने ऊंचा, वो जहाँ होता है वो अल्लाहाबाद हो गया। ऐसे ही कोई स्थूल सागर की बात थोड़े ही है, ये ज्ञान चैतन्य सागर की बात है या स्थूल सागर की बात है? चैतन्य सागर की बात है। चैतन्य सागर के किनारे जगन्नाथपुरी होती है, उसे कहते हैं भ्रकुटी। हाँ, गुंजार दादी में ब्रह्मा की सोल माने चंद्रमा की सोल मुरली चलाती है ना, वो चंद्रमा की सोल तब तक गुप्त नहीं हो सकती जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होता। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा बने और वो गुप्त हो, और दूसरी तरफ सूर्य प्रत्यक्ष हो। पूर्णमासी होती है ना, क्या पूर्णमासी होती है? तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। तो अस्त तब होगा जबकि सूर्य उदय हो, माना बाप की प्रत्यक्षता हुए बगैर गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा का पार्ट समाप्त नहीं हो सकता। एक तरफ प्रत्यक्षता हो और दूसरी तरफ अस्तता हो। हाँ जी,
अगले तीन साल में तीन ग्रुप पार्टी, बेसिक पार्टी और विजय माला।
हाँ जी, हाँ जी,
तीन ग्रुप में तीनों किसी तरह सहयोग दे तो आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ जी,
वाणी में।
हाँ जी, हाँ जी,
एडवांस पार्टी और बेसिक पार्टी तो सम्मुख में दिखाई दे रहा
है,
तो विजय माला के
उसी के लिए तो बताया तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में तीन साल साढ़े तीन साल लगते हैं।
तो उसका
पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 14 साल। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए, 77 में जाके 77 में जाके संपूर्णता वर्ष हुआ, वो भी सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कुछ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे ही जो तीसरी मूर्ति है परिवर्तन शक्ति, वो भी प्रत्यक्ष होगी, लेकिन 3.5 साल उसे लगेंगे और 3.5 साल के बाद जब प्रत्यक्ष होगी तो जो विशेष उसके नजदीकी होंगे उनके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगी।
तो वो लोग अभी सहयोग देंगे मतलब किस तरह से
हाँ, अगर सहयोग नहीं देंगे सहयोगी नहीं बनेंगे तो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड कैसे होंगे? ऐड तो तभी होंगे जबकि सहयोगी बने एक दूसरे के।
और अच्छा बाबा जो नवग्रह होते हैं ना,
हाँ जी,
वो अभी हम देखे जाए तो हमारी ब्राह्मण दुनिया में और शरीर के साथ भी होते होंगे नवग्रह, जो जैसे जड़ ग्रह है ऐसे चैतन्य ग्रह भी होते होंगे
तो होंगे ही, कोई नई बात है क्या?
नहीं बाबा, वो
जड़ सितारे हैं तो चैतन्य सितारे नहीं होंगे?
हाँ तो बाबा उसमें जो सूर्य है जो बृहस्पति है वो तो अलग अलग हो गए, परंतु अभी हमारे ज्ञान की दृष्टि में वो तो व्यक्तित्व एक है, वो कैसे?
ऐसे नहीं है, सूर्य जो है वो वास्तव में ज्ञान सूर्य कौन है जो हमेशा सूर्य ही रहता है, फिर वो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम सूर्य पड़ गया। कि मैं सूर्य को आके पहले ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान लेता कौन है? शुक्र ग्रह लेता है या बृहस्पति लेता है?
तो बाबा वो एक ही शरीर द्वारा दोनों का पार्ट बनता है।
हाँ जी हाँ जी, अब जिन लोगों ने भट्टी नहीं की है वो प्रश्न वगैरह न करे अभी।
बाबा 16 कला किसे कहते हैं?
जिन्होंने भट्टी किया है वो पूछिए।
16 कला जैसे चंद्रमा की होती है तो उसकी रोशनी कम होती है रोशनी बढ़ती है, जब पूरी रोशनी बढ़ जाती है तो संपूर्ण चंद्रमा जो है वो पूर्णिमासी कही जाती है। ऐसे ही आत्मा की जब पूरी रोशनी बढ़ जाती है आत्मिक स्टेज की तो उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। वो मीजरमेंट है, अलग अलग कलाएं नहीं है। जैसे उन्होंने बोल दिया नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, ऐसा कोई नहीं है। हाँ जी,
तो बाबा इसको ये बता सकते हैं जैसे शरीर धारण करते हैं 16 श्रृंगार करती है वैसे आत्मा भी 16 श्रृंगार करते हैं, जैसे कान में पहनना आत्मिक स्थिति में रहना, ये आत्मा जब इसको धारण करेंगी तो वो 16 कला हो पाएगी?
तो सारी इंद्रियों में कलाएं समा जाएंगी ना, सारी इंद्रियों में पवित्रता समा जाएगी तो कलाएं भी समा जाएंगी।
तो बाबा उसी को 16 कला का
रोशनी भी समा जाएगी। हाँ जी,
उसी को 16 कला का
अमरनाथ मंदिर कब से हुआ? अमरनाथ मंदिर,
अमरनाथ मंदिर,
हाँ जी, जो बाबा का यादगार है वो कब से कौन सा दिन से आया?
जब से शिव जयंती मनाना और उसकी छुट्टी होना शुरू हो गई।
अच्छा, भगत लोग आजकल बहुत उठा रहे, इसमें भगत लोग बहुत भीड़ होता है आजकल, आगे तो कोई नाम नहीं सुना रहता, आजकल बहुत अमरनाथ मंदिर में भीड़ होता है आजकल।
भीड़ होगी नहीं, बाबा ने पहले ही बोल दिया है।
हाँ जी,
बच्चों के सामने भीड़ नहीं होगी,
आगे पहले कोई नाम नहीं सुना रहा था।
हाँ,
कहीं कोई जाना
नाम नहीं सुना था अमरनाथ यात्रा का
ना, कोई इतना भीड़ नहीं रहा जाना आने का।
अरे वर्षों से अमरनाथ यात्रा चलती चली आ रही है। हाँ, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, अभी एडवांस पार्टी में संख्या बढ़ेगी या घटेगी? है तो बढ़ेगी ना, तो अमरनाथ की यात्रा भी बढ़ेगी घटेगी?
बायां हाथ में जो झाड़ू महाकाली का हाथ में, बायां हाथ में जो झाड़ू लगे वो तो जमुना पाठधारी जो आत्मा है वो अभी तक कलकत्ता में पहुंच गई, वो कब से वो
कलकत्ता में पहुंच गई कि कलकत्ता से पहुंच के वापस आ गई?
दिल्ली आ गई,
दिल्ली आ गया।
हाँ,
तो कब से फिर सहयोग देंगे वो?
हैं,
वो कब से सहयोग करेंगे?
कब से सहयोग करेंगे?
महाकाली
जब त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो सब कुछ होगा। पहले तो महाकाली का पार्ट होना चाहिए या पहले लक्ष्मी का पार्ट होना चाहिए? पहले झाड़ू लगना चाहिए या पहले लक्ष्मी का प्रत्यक्ष होना चाहिए? झाड़ू लगने का टाइम आ गया, रेडी रहो।
जगदम्बा का ऊपर ज्ञान का कलश किसका ऊपर भाव आविष्कारित किया?
जगदम्बा को दिया,
जगदम्बा। लक्ष्मी माता क्यों नहीं दी? कहीं बताया कि जगदम्बा ऊपर दिया, इसको कारण?
पहले पहले तो धारण करने वाला हाथ चाहिए कि पहले बांटने वाला चाहिए? जब किसी को कलश दिया जाता है
धारण करना वाला
तो पहले धारण करने वाले हाथ को दिया जाता है या पहले बांटना शुरू कर देते हैं?
ध्यान करना,
तो धारण करने के लिए उसको दे दिया। उसके अंदर जितनी ज्ञान की धारणा होगी उतनी अभी धारणा लक्ष्मी के बुद्धि में नहीं होगी। जब लक्ष्मी की बुद्धि में वो ज्ञान की धारणा हो जाएगी तो वो फिर बांटना शुरू कर देगी।
संकट जब उल्टी चलन चलने लगे वो बिच्छू पिंडन फायदा
है। अब सीधी चाल नहीं मालोगे तो टीढ़ी उंगलियां करनी पड़ेगी ना, है? या सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सीधी उंगली घी में डालो और उठाओ घी निकलेगा तो क्या करना पड़े? टेढ़ी उंगली करनी पड़े ना। तो ब्रह्मा बाबा का जो पाठ था, जो 100 साल पूरे होते हैं वो तब तक काम नहीं हुआ क्या? ब्रह्मा के रूप में प्रजापिता की सोल पाठ बजाती है कि नहीं? कब तक? 77 तक। प्रजापिता 60 साल का था तो प्रवेश हुआ, और फिर 40 साल और ऐड किए तो कितना आया? 77 आया। तो 77 में ब्रह्मा की मूर्ति का पार्ट, पहली मूर्ति का पार्ट प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट खलास हुआ ना, तो उसमें सीधी उंगली से तो घी निकला नहीं, निकला नहीं निकला तो क्या करना पड़े? और टेढ़ी उंगली नहीं करना पड़े। ब्रह्मा का पार्ट जो था वो तो सीधा साधा था, बच्चे करें या न करें, ब्रह्मा बाबा को तो सहन शक्ति धारण करनी है, सहन शक्ति धारण करनी है, अच्छे अच्छे दिव्य गुण धारण करने हैं, प्योरिटी धारण करनी है। बच्चों की तरफ नहीं देखा, क्या किया? खुद करके दिखाया कि ऐसा पार्ट बजाना है। तो पहली मूर्ति का पार्ट बच्चों के सामने आया, तो ये सीधा साधा पार्ट हुआ या तिकड़म पेच वाला हुआ? सीधा साधा पार्ट हुआ। इसलिए शेर दो तरह के दिखाए जाते हैं, एक शेर होता है बबर शेर, बड़े मोड़े वाला, वो बहुत सीधा साधा होता है, सीधा हमला करता है, और एक होता है बाघ या टाइगर, वो बहुत चालाक होता है, बहुत चुस्त होता है, हाँ, और वो जब फोर्स में आता है तो फूल के मोटा हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है और मौका देख करके हमला करता है। जब देखता है अभी मौका नहीं है, अभी फंस जाएंगे, तो हमला नहीं करता। जब देखता है अभी पावर सारी हाथ में आ गई, फिर हमला करता है। तो ऐसे ही शंकर जी का पार्ट पहनते हैं तो क्या पहनते हैं, और बैठते हैं तो काहे पे बैठते हैं? ये सब यादगारें दिखाई गई है।
तो बाबा बब्बर शेर
जो पार्ट है, है?
बब्बर शेर का किस्सा
ब्रह्मा का पार्ट, वो सीधा साधा पार्ट बजाया, नहीं माना तो फिर पासा पलटना पड़ेगी नहीं? तो शिव बाबा ने पासा पलट दिया, क्या किया? अच्छा ऐसे नहीं मानते हो, चलो हम बिच्छू टिंडन पैदा करते हैं। बिच्छू टिंडन ने क्या किया फिर? रुद्र और वत्सों ने, रुद्रगणों ने यज्ञ विध्वंस, यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया है? उसका विध्वंस बाद में होगा। दह कुटिया में आग, बाबा चंपत वे, पहले घर का सुधार कि पैर का सुधार? तो घर कौन सा है? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। वहाँ ब्रह्मा कुमारियों में भी ये बात लागू हुई, क्या? कि जो अंदर वाले समझे जाते थे सरेंडर हैंड्स, वो एडवांस नॉलेज लेने से रह गए, और जो बाहर वाले समझे जाते थे गृहस्थी गिरिहस्थी आप अपवित्र समझे जाते थे ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में, वो ले गए। क्या ले गए? हैं? एडवांस ज्ञान ले गए, बाप का जो एडवांस पार्ट है वो ले गए। अब यहाँ भी वो ही नियम लागू होने वाला है, क्या है? जिसने प्रश्न किया है वो तो सुनता ही नहीं, वो दूसरे बातों में लगा हुआ है। तुम्हारी बात का जवाब आ रहा है।
मैं बाबा ये दीपक भाई ने बोले बाबा खबरी में आ रहा है वो, आप थोड़ा
वो छोड़ दो, तुम अपनी बात तो समझ लो। तो वो बात अभी यहाँ भी लागू होने वाली है क्या? अंदर वाले रह जावेंगे, जो एडवांस पार्टी वाले अंदर वाले समझते हैं अपने को वो रह जावेंगे, और विजय माला जो बाहर समझी जा रही है वो ले जावेंगे। क्यों ले जावेंगे है?
बिच्छू टिंडन का पार्ट बजाने शुरू कर दिया, इनका पावर लेने का मतलब नहीं।
तो बाबा ने कहा कि तुम बिच्छू टिंडन बनो?
नहीं।
फिर बिच्छू जो होता है वो कैसे पैदा होता है मालूम है? हैं? जो माताएं होती हैं उनका पेट फाड़ देता है। यहाँ माताएं कौन है? हैं? यहाँ माता कौन है?
जगदम्बा।
जगदम्बा माता है, और उसकी भुजाएं कौन है?
माताएं।
जो सरेंडर हुई है वो बैठी हुई है वहाँ सहयोग में, वो सारी तुम्हारी कौन हुई? वो माताएं हुई। और बिच्छू कैसे पैदा होता है? उनके बुद्ध रूपी पेट को फाड़ देता है। क्या बुद्धि क्या हो जाती है? ब्रेन, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तब बिच्छू पैदा होता है। तो माताओं को माताओं की दृष्टि से देखना चाहिए ना, प्रकृति को माता की दृष्टि से देखना चाहिए या घरवाली की दृष्टि से देखना चाहिए? हैं? अरे प्रकृति है, माता है, जगदम्बा है, तो जगदम्बा की उंगली पकड़ लो तो क्या कहा जाएगा? हमने जगदम्बा को पकड़ लिया या सिर्फ उंगली को पकड़ा? जगदम्बा को पकड़ा। तो जो भी जगदम्बा की भुजाएं हैं चाहे उंगुलियां हैं वो कौन है? हमारी माताएं हैं। तो माताओं के साथ माताओं की तरह ट्रीट करना चाहिए या दूसरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए? माता ही समझना चाहिए। हाँ जी,
श्री कृष्ण
जी
के संग में बाबा ने बोले थी,
शंकर
ने शक्तियों को प्रदान करने के लिए।
हाँ जी, हाँ खुद गाय के लिए करे, अपने ऊपर दोष नहीं आ जाएगा?
खुद करने से पाप चढ़ता
है। और क्या?
क्यों पाप चढ़ता
है? तो इम्प्योरिटी करेगा तो पाप नहीं होगा? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है, प्योरिटी से होती है स्थापना।
किधर है?
पर बाबा ये भी कहा गया कि स्वरूप निष्ठ व्यक्ति चाहे दुनिया का भी विनाश करता है कोई पाप नहीं करता।
हाँ तो स्वरूप निष्ठ हो ना, जगदम्बा स्वरूप निष्ठ होकर के करती है क्या? है महाकाली बनती है तो कैसे बनती है? महाकाली ने भी कोई पवित्रता का रूप अपनाया होगा तब तो उसकी पूजा होती है। तो पहले जब सत्व प्रधान थी तो पवित्र थी, जब तमो प्रधान बनती है तो अपवित्र रूप अपनाती है, अपवित्र रूप अपनाती है तो फिर शंकर जी की छाती को पांव रख देती है।
बाबा
हाँ,
गीता का भगवान साकार में जो ब्रह्मा बाबा की सोल अपने को खुद को समझती है।
हाँ जी,
तो वो जो इशारा देते हैं अव्यक्त वाणी में,
हाँ
व्यक्त में अभी भी सहारा है, साकार सहारा,
हाँ
और आदि की इशारा भी उसके स्मृति में रहती है, जो पीयू वाणी,
पीयू की वाणी है ये, व्यक्त में अभी भी सहारा है।
नहीं ये तो अव्यक्त वाणी की बात है,
हाँ
जो उसके स्मृति में भी रहती है वो आदि की बात भी रहती है ना?
क्या स्मृति में रहती है?
जो पीयू वाणी चलती थी आदि में,
हाँ।
ब्रह्मा बाबा लिखते थे 10-15 पेज,
हाँ।
और बाबा लिखवाते थे,
हाँ।
वो भी तो स्मृति में रहती है ना?
हाँ रहती है।
तो फिर भी उनकी निश्चय अनिश्चय में कैसे आते हैं?
निश्चय 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 ब्रह्मा बाबा की निश्चय निश्चय में क्या आता है?
कि साकार में गीता की भगवान खुद है।
गीता का भगवान की बात है, यहाँ गीता के भगवान की बात कर रहे हो ना?
हाँ जी,
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है।
हाँ जी, वो खुद को समझती है ना?
हाँ, तो गीता का भगवान साकार में है।
हाँ जी,
सत्ता का भगवान साकार में कृष्ण है।
कृष्ण है
हाँ, ये बुद्धि में बैठा हुआ है, वो तब तक बैठा हुआ है जब तक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। वो सूक्ष्म त्रुटि रह गई, वो सूक्ष्म बात भी बुद्धि में से निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर ही खलास हो जाएगा।
वही प्रश्न है, वो कैसे अपने को बुद्धि से नहीं निकाल पाते?
अभी सूक्ष्म शरीर पकड़ रहे कि नहीं? ब्रह्मा कुमारियों के संग में जाते हैं कि नहीं?
हाँ जी।
तो संग का रंग नहीं लगेगा है?
लगता है।
तो फिर बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है आत्मा तो बीज रूप हो जाती है, वहाँ जाती है तो सूक्ष्म अध्यय अभिमान आ जाता है।
नहीं, उनके स्मृति में जो रहता है साकार में, जो आदि में भी थे।
क्या आदि में थे?
जो पाणी चलते थे, जो बाबा लिखवाते थे।
हाँ,
उनके स्मृति में भी रहती है ना?
हाँ तो रहती है।
उसको नहीं समझ करके खुद को
तो आदमी ये बात कहाँ निकली कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है?
नहीं, अभी जो
ये पॉइंट आदि में थोड़ा ही निकला, ये पॉइंट तो बाद में निकला ना।
हाँ, मुरली में निकला।
हाँ जी,
तो अव्यतवाणी में जो चलाते हैं।
हाँ जी,
ब्रह्मा बाबा की सोल तो ही चलाते हैं ना?
ब्रह्मा बाबा की सोल चलाती है, लेकिन चलवाता कौन है? कोई अव्यतवाणी का एक भी पॉइंट ऐसा आता है जो मुरलियों के पॉइंट्स को काटने वाला हो? एक भी अव्यतवाणी का ऐसा पॉइंट ऐसा वाक्य नहीं होता जो मुरलियों के महावाक्य को क्रॉस करता हो। इससे क्या साबित हुआ कि अव्यक्त वाणी भी जो बोली जा रही है, भले ब्रह्मा की सोल बोलती है गुलजार दादी, लेकिन वो शिव बाबा की याद में रह करके बोलती है। इसलिए शिव बाबा की याद में होने के कारण वो वाणी पैरेलल है मुरलियों के, विपरीत अर्थक नहीं हो सकती। शिव बाबा ही बुलवाता है, जैसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन कवियों के अंदर वो कविता में जो सच्चाई भरी हुई है संगमयुग की बातों को प्रत्यक्ष करने वाली, वो कविता किसने लिखवाई? नहीं समझ में आया? संगमयुग की बात बाद में, रामायण लिखी गई, भागवत लिखी गई, महाभारत लिखा गया और गीता लिखी गई, तो गीता में जो सच्चाई भरी हुई है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, वो उस समय जो गीता जिसने लिखी थी उसके अंदर वो सच्चाई किसने अनुच्छेद करी?
शिव बाबा ने
करी ना। ऐसे ही उनकी बात छोड़ दो, वो तो सतो प्रधान थे लिखने वाले द्वापर युग के आदि में। आज के जो फिल्मी गीतकार हैं, उन गीतों में जो सच्चाई भरी हुई है, जो मुरलियों में बाबा ने गीत छपवाए हैं, बोले हैं मुरलियों के साथ साथ और उनके अर्थ कराए हैं, वो फिल्मी गीतों में सच्चाई किसने भरवाई? जो सच्चाई संगम युग में साबित हो रही है, तू प्यार का सागर है। तो ये बात जो है ना, जैसे वहाँ शिव बाबा ने वो बात सच्चाई की नुधवाई, ऐसे यहाँ भी ब्रह्मा बाबा की वाणी में जो भी बातें आ रही है वो सब शिव बाबा भरवा रहा है। ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं है कि इसका ये अर्थ निकल सकता है। क्या
शिव बाबा ही?
ब्रह्मा बाबा बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका उनको अर्थ का पता ही नहीं है। जब एडवांस में आकर के उस अर्थ का क्लैरिफिकेशन टीचर देता है शिव बाप, तब पता चलता है कि ये बात ऐसी।
इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी लोग समझते हैं कि इसमें शिव बाबा भी आते
हैं। हाँ, लेकिन ये तो बात कहना ही गलत है। मुरली में तो बोला मैं सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ।
नहीं, आप जो बोले ना वो समझते हैं ये शिव बाबा आता है इसी वाणी को, तो वो लोग समझना चाहिए। आज जो हम बोलते हैं इसको तो मुरली बोलना चाहिए, अव्यक्त वाणी क्यों बोलते हैं?
तो नहीं, वो मुरली भी बोलने लगे वो अव्यक्त वाणी में ऊपर लिखते हैं मुरली, अब अव्यक्त वाणी लिखना भूल गए, इस तारीख की मुरली।
बाबा शिव बाबा ना तो मेल है ना फीमेल है।
हाँ जी,
ना साकार है और ना आकार है।
हाँ,
तो उनको हम कैसे समझ?
ना निराकार है।
आकार और साकार के बारे में कहा?
निराकार है।
नहीं, मुरली ने निराकार तो नहीं कहा, वो आकार नहीं है।
शिव को निराकार नहीं कहा?
नहीं, वो पॉइंट को छोड़ दिए
है।
तो मतलब कि वही है।
हाँ,
निराकार है।
जब प्रवेश करता हूँ तो मैं तुम्हारा साधन बन सकता हूँ, तुम्हारे पतियों का भी पति बन सकता हूँ। क्या कहते हैं, तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। बाकी कहीं कहा कि मैं तुम्हारी सजनी बन के आया हुआ हूँ? कुमारों से भी कहते हैं, कोई कोई कुमार है कहते हैं शिव बाबा हमारी सजनी है, तो बाबा कहते हैं तुमने अपने देवान को मारा है, माने तुम आत्मा बने हो। आत्मा बने नहीं है इसलिए बार बार भान आता है मैं तो पुरुष हूँ। जब पुरुष बने का भान आता है तब सजनी याद आती है देवान वाली। बाबा कहते हैं पहले आत्मा बनो, आत्मा बन करके फिर सजनी बनो।
हाँ, मासू का शब्द पुरुष के लिए है कि स्त्री के लिए?
माता शब्द स्त्री के लिए है, पिता शब्द पुरुष के लिए। शिव ज्योति बिंदु है वो माता पिता नहीं कहा जाता जब शरीर धारण करे, जब शरीर धारण करता है।
मासुक बोले कि मासुक, मासुक का क्या होता है वही बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ बोलो।
मासुक का स्त्री शब्द है,
है?
स्त्रियों के लिए
सुख। हाँ
तो बाबा कहते हैं तुम एक मासुक के
साथ, मासुक के साथ मासूका भी होती है। आप भूल गए या उर्दू जानते नहीं है? और मासूका होती है उसको कहते हैं फीमेल। भाषा न होने की वजह से आपको ये प्रश्न पैदा हो रहा है। मासूका कहा जाता है स्त्री को और मासूक पुरुष को। ऐसा नहीं कि मासूक जो होता है वो स्त्री हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मासूक होता ही है मेल। हाँ जी
बाबा, मनसा सेवा और शुभ संकल्प अलग अलग है या एक है?
नहीं, संकल्प जो है वो संकल्प शक्ति ही मनसा सेवा है।
तो दिन में भी जो शुभ संकल्प करते हैं वो मनसा सेवा हो सकता है?
मनसा सेवा
नहीं, जो अमृत वाले जो सकाश देने के लिए
है?
अमृत वाले जो सकाश देने के लिए बोलते हैं ना।
हाँ जी,
तो वो क्या अलग करना?
संकल्प ज्ञान युक्त करेंगे तो मनसा सेवा है।
नहीं, बैठ करके
है?
बैठ करके कर सकते हैं ना?
बैठ के करो, काम करते करो, संकल्प तो कैसे भी किए जाते।
नहीं नहीं, कोई भी आत्मा को जो लाने के लिए,
कोई भी आत्मा को सकाश देना है तो बैठ के भी कर सकते हैं, काम करते भी सकाश दे सकते हैं।
काम करते भी उसके बाद
लाते हैं,
काम करते भी उसके बाद
लगी हुई होती है तो काम करते भी बुद्धि उधर जाती है। माँ है, बच्चा बाहर निकल गया, छोटा बच्चा है तो उसकी बुद्धि बच्चे में लगी हुई है, कहीं कोई बात न हो जाए तो काम भी करती रहती है और बुद्धि से उस बच्चे को वाइब्रेशन भी देती रहती है।
तो बाबा
ऐसे यहाँ भी
बाबा को याद करते करते उस आत्मा को भी
सकाश देंगे।
कोई भी आत्मा को सकाश देंगे तो पहले उसका चेहरा तो याद आएगा, साकार में चेहरा याद आएगा, बाद में तो उसकी आत्मा को याद करो तो उसको आत्मा को ताकत मिलेगी। नहीं तो पेक्युलरिटी का पता कैसे चलेगा हमने कौन सी आत्मा को सर्च लाइट दी। शायद शक्तिशाली तभी बनेगी जब एकाग्रता आएगी। एकाग्रता तभी आएगी जब एक को याद करेंगे।
माता जी बोलने का मकसद यही है कि
है?
बाबा से फोर्स लेग दूसरे आदमी आत्मा को मैं सकाश देने चाहता हूँ, इसीलिए बाबा को पहले याद करें कि पहले वो आत्मा को याद करो,
पहले आत्मिक स्थिति को याद करो।
आत्मिक स्थिति को
फिर शिव बाबा आराम से याद आएगा। फिर सबसे पहले जिस आत्मा को सर्च लाइट देनी है उसका चेहरा एक बार आना चाहिए सामने। चेहरा आने के बाद फिर उसकी आत्मा को याद करो,
उसकी भ्रुकुटी को।
हाँ जी, भ्रुकुटी नहीं, भ्रुकुटी में आत्मा को,
भ्रुकुटी में आत्मा।
हाँ जी
बाबा, मुरली में बाबा बोले कि बाप को गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है।
हाँ जी,
तो ये सुप्रीम सोल बाप की बात है कि राम बाप की?
क्या बात बोले, जोर से बोलिए ना।
ये सुप्रीम सोल बात है, बाप की बात है कि राम बाप की बात है?
क्या बात है,
दोनों अलग अलग है क्या? हैं? दोनों अलग अलग हैं कि एक है?
बाप को क्या करना?
पर्सनालिटी एक है या अलग अलग?
पर्सनालिटी एक है।
पर्सनालिटी एक है, फिर किसको गुप्त करेंगे, किसको प्रत्यक्ष करेंगे? अरे बिंदु को प्रत्यक्ष करेंगे तो साकार प्रत्यक्ष हो जाएगा, साकार को प्रत्यक्ष करेंगे तो भी बिंदु प्रत्यक्ष हो जाएगा। गुप्त इसलिए रहने दो, इसलिए कहा कि आगे चल के जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे बाप के गुप्त रहने में फायदा है। सेफ्टी ज्यादा रहेगी और जितना प्रत्यक्ष कर देंगे उतनी सेफ्टी कम हो जाएगी। आज मुरली की शुरुआत किस बात से हुई है? हाँ, रूहानी मिलिट्री के मार्शल मार्शल को जितना सेफ करके रखेंगे उतना सारी सेना की सेफ्टी ज्यादा है। हाँ जी,
महाभारत लड़ाई क्या
होगी? महाभारत लड़ाई क्या होगी? अभी ताना बाना बोलना नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? वो भारत के ऊपर लड़ाई है, जो भी रामायण का युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? राम रावण के बीच में निमित्त कौन बना? तो भारत माता हुई ना, देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें निमित्त कौन बना है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भारत माता हुई या नहीं हुई? ऐसे ही महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध में निमित्त कौन बना? द्रौपदी। तो जो द्रौपदी है वो भारत माता हुई या नहीं हुई?
बाबा
उसके पीछे युद्ध होता है, महाभारत युद्ध होता है, इससे बड़ा युद्ध और कोई दुनिया में होता नहीं।
तो अभी तक
राजयोग सिखाया तब कहा जाए जब राजयोग की सिद्धि सामने आए। हाँ जी, हाँ जी,
बाबा जब क्लास कराते रहते हैं तो उसी समय कैमरे में उनका ही फोटो निकालना चाहिए मेरे ये हिसाब से, क्लास के हिसाब से, ना कि तो मतलब बच्चों का भी मतलब फोटो उठाना चाहिए।
कैमरा जो है वो किस लिए बनाया गया?
फोटो उठाने के लिए।
नहीं नहीं, फोटो बनाने के लिए तो, लेकिन कैमरा है या दुनिया के जो भी साधन है वो किस लिए बनाए गए? बाप के साथ बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे कि बाप पहले प्रत्यक्ष होगा?
बाप के साथ बच्चे
पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। बाप ज्यादा पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल? ज्यादा पावरफुल कौन है?
बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता
है। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है ना, तो बाप प्रत्यक्ष करेगा तो बाप पहले कैमरा बच्चों के सामने रखेगा कि अपने सामने रखेगा? है
ये बात तो बाबा, इंद्र सभा माउंट आबू होना चाहिए
क्या?
ये जो इंद्र सभा जब
बाप और बाप के बच्चे बैठे
हैं? नहीं नहीं, होगा जब होगा,
होगा तब देखा जाएगा। अभी बाप और बाप के बच्चे हैं कहाँ? अभी सामने है तो यही कैमरा रखा जा रहा है। हाँ जी
बाबा।
हाँ
बाबा की अंत को जानना मैंने संत को जानना है,
है?
बाप की अंत को जानना मैंने तंत को जानना है।
अंत
अंत को जानना मैंने
अंत को जानना है।
हाँ, तंत को जानना है।
संग
तंत तंत
तंत को जानना है। हाँ,
ये बात बताई गई थी।
हाँ,
तो वो जानने का आधार क्या है?
आधार क्या है? आधार का मतलब
मैंने जानने के लिए,
अंत को जानने के लिए।
अंत
ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। जिसमें जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना अंत जानेगा। हम आदि और अंत को नहीं जानते, ऋषि मुनि कहते आए। हम उसके आदि को नहीं जानते, हम उसके अंत को नहीं जानते। आदि अंत को हम नहीं जानते, लेकिन वो नहीं जानते थे, बच्चे तो जानते जान सकते हैं ना। तो कितना जानेंगे? जितना ज्ञान में गहरे होंगे उतना ही जानेंगे ना। अगर ज्ञान में गहरे नहीं हुए तो नहीं जानेंगे। कोई सिर्फ बोल बोल के गहरे होते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना लेंगे, ज्ञान सुन लेंगे, लेकिन जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उनको ज्ञानी कहा जाएगा? उनको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कुकड़ ज्ञानी या रावण जैसे ज्ञानी। तो तंत जानना है तो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करना है। हाँ जी,
उसके बाद एक है लौकिक,
हाँ,
विचित्र के साथ चित्र और चरित्र भी याद है।
हाँ,
विचित्र के साथ चित्र और चरित्र भी याद है।
हाँ, विचित्र के साथ चित्र,
बाबा वो जो विचित्र जो है ना बिंदु है
हाँ?
तो बाबा वो तो हद का जो बिंदु है तो विचित्र कहा गया जो बेहद का बिंदु जो है
शिव
हाँ बेहद का बिंदु मतलब शरीर में रहते हुए जो शिव है निराकार है तो उसको बेहद का विचित्र कह सकते हैं कि नहीं
तो हद का विचित्र क्या होता है
मतलब चित्र में विचित्र को याद करने से
चरित्रवान देवता बन
बिंदु का तो चित्र होता ही नहीं है चाहे वो हद का बिंदु हो चाहे बेहद का बिंदु हो बिंदु की लंबाई चौड़ाई कुछ नापी जाती है नहीं तो वो बिंदु तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है जिसको हम शिव बिंदु कहते हैं वो शिव बिंदु तो सबसे अति सूक्ष्म है अणु अणियान सब अणु से भी अणु है वो बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं है उसको स्थूल नहीं कहेंगे वही विचित्र है उसका चित्र नहीं किया जाता है वो विचित्र को चित्र में याद करो माने साकार में याद करो हाँ
पहली लाइन तो समझ में आ रहा है साकार में जाकर याद करने से चरित्रवान
चरित्रवान बनेंगे
उसके बाद बोलता है एक है लव
अगर सिर्फ निराकार को याद करेंगे सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो क्षिप्र गति वाले बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे क्या निराकार जो है याद करेंगे तो इसका एक उन्होंने सीधे रूप में नहीं कहा कि निराकार को याद करने वाले दुष्चरित्र होंगे थोड़ा घुमा के कह दिया कि साकार को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे और निराकार को याद करेंगे तो दुष्चरित्र हाँ जी वो कैसेट में क्लेरिफिकेशन में है मुरली में नहीं सीधा कहा है हाँ लेकिन ये बात साबित हो जाती है कि निराकार को याद करने वाले जो हैं वो दुष्चरित्र होते हैं क्या जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसको याद करते हैं तो दुष्चरित्र हैं या देवता हैं दुष्चरित्र ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो जरूर बिंदु को याद करते होंगे पहले उनकी बुद्धि में जल्दी साकार नहीं बैठेगा जब साकार बैठेगा तब वो चरित्रवान देवता बनना शुरू होंगे
वहाँ बोलते हैं कि एक ही लवकुल एक ही लवकुल किसके लिए बोला
लवकुल लवकुल है शंकर और लवकुल है ब्रह्मा इसमें क्या नई बात हो गई
एक ही साकार में निराकार को भी याद करेंगे तो एक ही साकार स्वरूप हो गया जिसको शिव प्रवेश
हाँ
तो उसमें शंकर में शिव प्रवेश करते हैं
हाँ करता है
तो उसमें फिर ब्रह्मा को जो नारायण लेके लौक
हाँ
तो ब्रह्मा का प्रवेश का भी इधर दिया जा रहा है
ब्रह्मा शंकर में प्रवेश नहीं है क्या
हाँ आ जा रहा है ये जो पॉइंट में बोला
मतलब उसको हिसाब में ला जा रहा है
ब्रह्मा को याद करने के लिए कहाँ बोला
नहीं नहीं
हाँ
एक
हाँ जी हाँ जी
ब्रह्मा के बोला
जो भी साकारी है चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो ब्रह्मा वाली आत्मा हो दोनों साकार शरीर वाले हैं ना तो दोनों ही लवकुल होते हैं अगर दोनों लवकुल पाठ न बजाएं तो प्यार का सागर कैसे गाया जाएगा ऐसे नहीं कि चंद्रमा के रूप में जो पाठ बजाया वो ही प्यार का सागर है जो शंकर के रूप में पाठ बजाता है बाप के रूप में वो प्यार का सागर नहीं है बाप वो भी तो प्यार का सागर है ना तो ये बात साबित नहीं होती जैसे आपने समझ लिया है
कंफ्यूजन में
हाँ कंफ्यूजन है ये हाँ जी
उसके बाद किस्सा चित्र और चरित्र याद
बिल्कुल
विचित्र हो गया शिव बाप
हाँ
चित्र और चरित्र मतलब प्रजापिता का साकार शरीर
हाँ
और चरित्र मतलब उसका शरीर उनका चरित्र
हाँ
वही याद
चित्र भी याद आए चरित्र भी याद आए चित्र होगा तो चरित्र भी होगा हाँ और
बाबा जो नरक में मरते हैं वो नरक में जन्म लेते हैं
नरक में मरेंगे तो नरक में ही जन्म लेंगे ना ये क्या नई बात हो गई
जैसे कि अभी 4,50,000 तो आएंगे साकार में एडवांस में आएंगे 4,50,000
हाँ
बाकी तो सबको शरीर छोड़ना है
हाँ शरीर छोड़ना है
तो वो स्वर्ग में जन्म नहीं लेंगे
तो कैसे स्वर्ग में जन्म लेंगे वो तो शरीर छूट गया तो जन्म कहाँ हुआ जन्म माने प्रत्यक्षता बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना संसार के सामने तो ऐसे ही यहाँ बेहद का जन्म है दिव्य जन्म ये दिव्य जन्म का मतलब हम कौन सा देवता बनने वाले हैं वो यही पता लग जाए इसी शरीर के द्वारा, इसी दुनिया के अंदर, इन्हीं संगी साथियों के बीच में, तो वो हुआ प्रत्यक्षता रूपी जन्म, जैसे शंकर पार्वती का या जगदम्बा का।
वो तो फिर जन्म लेंगे इसी से आएगी, जो 4.5 लाख से जाते हैं,
जो शरीर छोड़ के जाते हैं वो
जन्म लेंगे इससे आएगी, 4.5 लाख उनको जन्म देने वाले,
जन्म देने वाले होंगे।
तो नर्क कहाँ है, वो तो स्वर्ग में आएंगे सतयुग में, वो भी तो स्वर्ग में सतयुग में तो आएंगे,
वो तो 8वें जन्म में सतयुग में आएंगे, वो भी आएंगे स्वर्गीय संगठन में आएंगे क्या?
नहीं वो तो
फिर तो जब तक प्रश्न एक बार रिपीट करो फिर से,
जो बाकी के 4.5 लाख ना उनके बारे में
जो मूल प्रश्न था वो रह गया।
नरक में मरते हैं,
नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, तो इसमें क्या बात नहीं समझ में आई?
मैं समझ आ रही हूँ, जो 4.5 लाख एडवांस में आएंगे,
एडवांस में आए हुए हैं,
आए हुए हैं 4.5 लाख आए, पूरा आ गए कि नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये तो आएंगे,
आएंगे हाँ,
लेकिन बाकी जो शरीर
आएंगे तब जब भट्टी करेंगे,
बाकी
भट्टी नहीं की है बाप के घर में जाकर के तो बाप के बच्चे नहीं बनेंगे। 9 महीने जैसे बच्चा पकता है पेट में, है ना, तो फिर बच्चा बन के पैदा होता है, ऐसे ही ये बेहद की भट्टी है, 7 दिन की और 1 दिन आना और 1 दिन जाना, जब जाते हैं तो भी ज्ञान बुद्धि में वो ही होता है, और जब भरपूर होके आते हैं तो भी बुद्धि में वो ही होता है, तो इसलिए 9 दिन की जो भट्टी है वो दुनिया से डिटैच कर देती है, जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो दुनिया से डिटैच हो जाता है, तो ऐसे ही ये 9 दिन की भट्टी में जब तक नहीं आएंगे तब तक बाप के बच्चे नहीं बन सकते, तो वो 4.5 लाख आत्माएं हैं जिनको भट्टी करना अनिवार्य है, और भट्टी करने के बाद भी फिर जिंदा बने रहे।
बाबू उनके शरीर में जो 9 लाख जो आने वाले और बाकी 4.5 लाख उनके शरीर में भट्टी करेंगे,
वो तो प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे ना, ज्ञान सुनेंगे नहीं 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे,
तो सिर्फ 9 लाख की भट्टी दिखा जाता है, एक शरीर के साथ एक शरीर में प्रवेश।
हाँ जी हाँ जी,
फिर बोलते हैं कि भाई ये नरक में जन्म लेना कहाँ हुआ, वो तो स्वर्ग छूट गया, छूट गया
है,
सर्व उनका तो छूट गया,
इनका 4.5 लाख जो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे,
जन्म लेंगे
हाँ,
नरक में कहाँ आए,
नरक में कहाँ आए,
वो तो फिर आएंगे सतयुग में।
अरे बाबा तो कह रहे हैं यही इसी शरीर से तुम्हें ऐसी स्टेज बनानी है कि तुम सुखमयी आत्मा अनुभव करो, अपनों को दुख महसूस न हो, न दुख देना है न दुख लेना है, सुख ही लेना है और दूसरों को सुख ही देना है, ऐसी स्टेज यहाँ बनानी है। अगर आत्मा की यही ऐसी स्टेज बन जाए तो स्वर्ग में कहे जाएंगे या नरक में कहे जाएंगे? हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, तो स्वर्ग में है या नरक में? हाँ जी
बाबा, वो जो बोलेंगे ना जो अष्ट रत्न होते हैं वो तो सूर्यवंशी से, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बाबा का
सब तरह के रत्न होते हैं, हीरा भी होता है जो हीरो पार्टधारी होता है,
नहीं वो बात नहीं
हाँ।
जो अष्ट रत्न होते हैं वो चार मामा कैटेगरी के और चार बाबा कैटेगरी के होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से निकलते है। फिर एक बार बोला है जो अष्ट रत्न जो होते है अष्ट 8 का धर्म से निकलते है वो पावरफुल आत्मा, फिर वो आठ धर्म से निकलते हैं, एक एसेट में सुना है
जो चंद्रवंशी है वो है चंद्रवंशी जो जैसे कि इस्लाम धर्म आता है तो इस्लाम धर्म में से बाद में मुस्लिम निकलता है, जैसे सूर्यवंश आता है सूर्यवंश में से चंद्रवंश निकलता है, ऐसे ही बौद्धि वंश आता है बौद्धि वंश में से फिर सन्यासी निकलते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन वंश आता है और क्रिश्चियन से वो नास्तिक निकल पड़ते हैं, ऐसे ही है
वो तो सूर्यवंश, तो ये जो अष्ट रत्न होते हैं तो सूर्यवंशी का हो गया ना,
जो अपने धर्म के कमजोर होते हैं थोड़े, इस्लाम धर्म के मुकाबले मुस्लिम धर्म पावरफुल है या कमजोर है, कमजोर है ना, बाद में आने वाला है ना, ऐसे ही सूर्यवंश के मुकाबले चंद्रवंश कमजोर है या पावरफुल है,
कमजोर है
हाँ जी, तो जो दाई ओर के है और एक बाई ओर के है ऐसे ही इनमें ज्यादा पावरफुल कौन है, दाई ओर के ज्यादा पावरफुल,
बाई ओर के ज्यादा,
जो बाई ओर के धर्म है वो ज्यादा पावरफुल है और बाई ओर के जो धर्म है वो कम पावरफुल है। जो बाई ओर जो दाई ओर के धर्म है वो है बौद्धि है और ये सन्यासी है और सिख है आर्य समाज है, तो इनमें पावर ज्यादा नहीं होती है। जैसे ही दूसरे धर्म वाले हमला करते हैं तो वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बौद्धि सारे ही कन्वर्ट हो गए मुस्लिमों में। अभी भी बौद्धियों में चीनियों में जापानियों में सारे संस्कार किसके अपना लिए गए, विदेशियों के सारे संस्कार उन्होंने अपना लिए हैं, तो भारत की धर्म से।